बहुत अच्छी मुरली संडे को हम सबने सुनी, भाग्य और भाग्य विधाता याद है, याद रखना है सबको, क्योंकि इस समय हम जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। भाग्य सबसे बड़ी चीज होता है संसार में। कर्म करना, मेहनत करना सब करते हैं, पर भाग्य अगर साथ न दे तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी को सफलता बिल्कुल सहज मिलती है, मेहनत के साथ भाग्य भी साथ देता है और भाग्य बनता है। पहली मोटी बात श्रेष्ठ कर्मों से, द्वापर युग से कर्मों के इफेक्ट से कईयों को कई बाधाएं आती हैं, कई निर्विघ्न रहते हैं। तो इस समय हम भाग्य बना रहे हैं जन्म जन्म का। भाग्य में बाबा ने भी कही कही बातें, तन का भी, मन धन, भक्तों का कितने भक्त होंगे, आगे के राज का, प्रजा बनाने का बाबा ने कुछ वर्णन किया, और भी सब देखें। तन अच्छा हो जीवन में बहुत कुछ अच्छा रहता है, और तन बीमार रहता हो सब कुछ बिगड़ा रहता है। और मन तो बहुत बड़ी चीज है, धन भाग्य की निशानी है, लेकिन मन को स्वस्थ रखना, मन को प्रसन्न रखना, अपने परिवार को अच्छा रखना, ये भी बहुत बड़े भाग्य की पहचान है। प्रजा कितनी होगी, भक्त कितने होंगे, वो तो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है, पर वर्तमान में और चीजों पर भी विचार करें। बुद्धि हमारी कैसी रहे 84 जन्मों में, सोच लेना है, उसका निर्माण यहीं करना है। परिवार हमें कैसे मिले हर जन्म में, उसकी नींव यहीं डालनी है। सफलता मिले, बाधाएं ना हो, निर्विघ्न रहें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत लोग यही बात पूछते हैं, बिजनेस चल रहा है अब विघ्न आ रहे हैं, पढ़ाई चल रही है विघ्न आ रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, 5 बार एग्जाम दे चुका क्लियर ही नहीं हो रहा है। कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आजकल बड़ी नौकरियों के लिए, लड़कियां बहुत करती हैं, हो ही नहीं रहा है। जिसने संगम युग पर भगवान के कार्यों में सहयोग दिया, उन्हें जन्म जन्म सहज सफलता, और जिन्होंने विघ्न डाला उनके जीवन में विघ्न चलते रहते हैं। विघ्न सूक्ष्म चीज है यज्ञ के लिए। वैसे तो किसी को पता नहीं चलेगा हम विघ्न डाल रहे हैं या नहीं, पर यज्ञ में व्यर्थ बढ़ाना ये विघ्न है। मोटी सी बात, यज्ञ के भोजन को वेस्ट करना, भाग्य कटेगा या बनेगा? कटेगा। जो ध्यान छोड़कर शादी कर रहे हैं वो विघ्न डाल रहे हैं या सहयोग? सब विघ्न डाल रहे हैं, क्योंकि अनेक सुनने वाले जो ध्यान में नहीं हैं, वो उनको देखकर कुछ कुछ बोलते हैं। एक माता आज बता रही थी कि हमारे फलाने व्यक्ति को जो ध्यान में चलता है बहुत गुस्सा आता है, तो और संबंधियों को मैं ज्ञान सुनाती हूँ, वो उसका उदाहरण देते हैं, 30 साल हो गए तुम्हारे पास जाते, अब तक तो गुस्सा छूटा नहीं, हमें क्या मिलेगा वहां से। तो क्रोध विघ्न हुआ ना, कईयों को रोक रहा है। एक ने तो ये भी सुनाया, वो व्यक्ति जब से तुम्हारे यहाँ जाने लगा तब से बीमार रहता है, हम नहीं जाएंगे। लोगों का अपना गुस्सा उतारने का भी अलग अलग तरीका होता है ना। तो हम सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करें, इसमें जो गुह्य बातें थी उसके लिए मैं बाबा की एक गुह्य बात आपको पहले ध्यान में दे दूं। संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। भगवान वाच्य है अव्यक्त मूल्यों में। सुने सभी, सुना बहनों ने, जितने जिसके पास संकल्पों की शक्ति होगी उसका भाग्य उतना ही महान बनेगा। इसलिए बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प चलाना घाटा, समर्थ संकल्प चलाने से भाग्य श्रेष्ठ बनता है। संकल्प से कर्म तो है ही बड़ी चीज, वो तो द्वापर से भी चलता रहेगा, पर संगम युग पर क्योंकि हम आत्मा को संपूर्ण बना रहे हैं, आत्मा का उत्थान कर रहे हैं। आत्मा का उत्थान माना मन और बुद्धि और संस्कारों का उत्थान। और मन में यदि व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो आत्मा का उत्थान होगा या पतन? पतन। एक और हंसी की बात याद आ गई। एक माता आई मेरे पास कुछ समस्या लेकर। आज मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसे एक घंटा योग कर लो रोज 21 दिन तक, आपके विघ्न नष्ट हो जाएंगे। भाई जी योग तो लगता नहीं। मैंने कहा कितने समय से ज्ञान में? 25 साल से हूँ। मैंने कहा योग सीखने के लिए और कितने साल चाहिए? नहीं, सीखा तो है पर लगता नहीं। मैंने हंसी में पूछा, 25 साल में तुम्हारा योग का चार्ट 25 घंटे रहा होगा? पता नहीं रहा या नहीं। तो भाग्य श्रेष्ठ बन रहा होगा या कुछ भी नहीं? चल तो रहे हैं। कहा मेरी धारणा है तो सब ठीक है 25 साल से, पर मेरा योग नहीं लगता। चलो धारणाओं के नंबर तो मिल जाएंगे, परंतु आत्मा की डिग्री बढ़े, कलाएं जिसे कहते हैं, वो संपूर्णता की ओर चले, 100 तक पहुंचे, ये तो नहीं हो रहा है ना? माताओं का योग लगता है? आपसे पूछ लो किस किस का अच्छा लगता है, हाथ उठाना जरा। भाई यहाँ तो माताएं योगी हैं सब। घर में जाके, घर में भी लगता है, यहाँ ऐसा सीख कर जाना कि सदा अच्छा योग लगे। आप अच्छे स्वमान में हैं, वो भी योग है। ये स्मृति है कि 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, भी घर चलना है, ये भी योग है। बाबा से बातें करना, वो भी योग है। ऐसे दीदीपन का अभ्यास करना, ये भी योग है। परमधाम में बाबा से जुड़ना, सकाश देना, ये सब योग हैं। तो इसमें अपने को अच्छा बनाना ही, क्योंकि सुख ही इससे मिलता है। वर्तमान में भी सुख मिलता है और भविष्य भी सुंदर बनता है। तो एक चीज पर हम ध्यान देंगे, संकल्प की एनर्जी शक्ति कमजोर न पड़े, वो व्यर्थ न हो। व्यर्थ संकल्पों को रोकना बहुत ही प्रश्न पूछते हैं, माताएं उसमें ज्यादा होती हैं। चलते फिरते क्लास कराई नीचे, 10 प्रश्न चलते, भाई जी संकल्प बहुत चलते, क्या करें? मैंने कहा मैं हम एक इंजेक्शन तैयार कर रहे, कुछ समय में हो जाएगा, सबको एक एक लगेगा, संकल्प खत्म हो जाएंगे। संकल्पों को समाप्त करना व्यर्थ को बहुत बड़ी साधना है। बाबा ने कहा बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी सबसे श्रेष्ठ साधना है। उसके लिए आत्मा में ज्ञान का बल बहुत चाहिए, स्वमान बहुत चाहिए, बाबा में विश्वास बहुत चाहिए, अपने में विश्वास चाहिए। और व्यर्थ से मैं माताओं कहा, नाक कान मुंह आंख सब बंद कर लो, नाक भी कर लो, खुशबू भी आ जाती है ना इधर उधर से, सोचने लगते हैं पता नहीं क्या है, सब बंद करेंगे अर्थात अंतर्मुखी होंगे तो ये व्यर्थ हटेगा। नहीं तो जिनको व्यर्थ हटाने का संस्कार न पड़ा, व्यर्थ चलाने का संस्कार पड़ गया, तो दिनों दिन जो संसार का हाल बिगड़ता जा रहा है, व्यर्थ की स्पीड बढ़ ही जाएगी, कम नहीं होगी। समय बिगड़ता जाएगा, दिनों दिन हाल बुरा होता जाएगा। मैं तो टीवी आदि देख नहीं पाता, पर जो देखते हैं मुझे बताते हैं, पाप अति में पहुंचता जा रहा है। आज ही कोई मुझे मिला, कहा पता नहीं जोधपुर में या कहां, एक बाप ने सुपारी देकर अपने यंग बेटे की मर्डर करवाया। और देखिए वंडरफुल बात, आप सुने तो हैरान हो जाएं, 37 साल का उसका लड़का, अब जाके ये भी बूढ़ा हो गया 67, अब जाके उसको अपनी पत्नी पे शक हुआ कि ये मेरा लड़का नहीं है, किसी और का है, मरवा दो इसे। देखो हाल, देखो पाप का, विचारों का। वो भी पकड़ा गया तुरंत, जिसको 5 लाख दिए मरवाने के लिए, वो भी अरेस्ट। 3 गए ना एक साथ, जीवन कैद, टेंशन, उस लड़के की पत्नी बेचारी रो रो के बेहाल, एक बच्चा, क्या हाल होता है परिवारों का। पाप, इतने पाप जिनको बताया भी नहीं जा सकता। तो ये दुनिया अब समाप्त होगी, हाल बिगड़ता जा रहा है, सब मर्यादाएं टूटती जा रही हैं, हिंसक वृत्ति बढ़ती जा रही है, कई मर्डर के केस चल रहे हैं पैसे के लिए। एक गाजियाबाद का बड़ा फेमस होता जा रहा, 100 करोड़ की संपत्ति लेने के लिए उसकी पत्नी और बच्चे ने बाप को मारा और ऋषिकेश की पहाड़ियों में फेंक आए, लेकिन जैसे ही वो वापिस आए पकड़े गए। कितने केस। तो ये सब धन भी कष्टदायी बनता जा रहा है, बाबा के बच्चे सुखी। अब जो धन के पीछे भागेंगे वो सब कुछ गंवा देंगे, धन बाबा देता रहेगा, लेकिन ये धन की अति बहुत पाप करा रही है आजकल। अब तो सभी यहाँ साधारण बाबा के बच्चे, कमाने खाने वाले, बहुत सुखी है ना, सुखी। ये माताओं को रहता है करोड़पति बन जाएं, करोड़पति नहीं बनना, अब तो बाबा से सब कुछ लेना है, बाबा से सब कुछ लेना है। बहुत अच्छा महावाक्य नोट किया होगा आप सबने, बाबा से मिलन ही मिलना है, मिलना माना सब कुछ मिलना, श्रेष्ठ भाग्य मिलना। मैं बाबा भी लैंग्वेज बड़ी सुंदर बोलता है, साहित्यिक भाषा। भगवान से मिलना, कितना अच्छा उदाहरण दिया, किसी बड़े व्यक्ति के पास जाओ वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा, और भगवान के पास जाओ रोज भंडारे भरकर आओ। इस पर सबको ध्यान देना है, योग युक्त होना श्रेष्ठ भाग्य निर्माण की सबसे सुंदर विधि है। बस बाबा के पास जाना है हमें, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, उस पर बुद्धि एकाग्र हो जाए तो सब कुछ मिलने लगेगा। फिर सूक्ष्म लोक में बाप दादा से मिलन करेंगे, सब कुछ मिलने लगेगा। दो चाबी बताई, उदाहरण दिए ना लोकर के, तो एक आत्मा चाबी, एक परमात्मा, एक बाबा, एक ब्रह्मा बाबा। तो परम धाम में भी अपने को स्थित करेंगे तो शक्तियां बहुत मिलेंगी, उससे भाग्य श्रेष्ठ होता जाएगा। और सूक्ष्म लोक में बाप दादा से मिलन करेंगे, उनके वरदान लेंगे, दुआएं लेंगे, तिलक लगवाएंगे, राजभाग्य का तिलक, भाग्य श्रेष्ठ बनता जाएगा। देखो बाबा एक चीज मुरली में रोज कहते हैं, मैं तुम्हें राजभाग्य का तिलक देने आया हूँ। सुनते हैं ना साकार मुरलियों में। और ये तिलक किसे मिलेगा? हाँ, एक तो बाबा कहते हैं जो आत्मा का तिलक लगाए रखेंगे स्वराज्य अधिकारी, दूसरा इस पढ़ाई से मैं तुम्हें राजाई का तिलक देता हूँ। तो पढ़ाई से भी श्रेष्ठ भाग्य बनता है, आत्मिक स्वरूप में रहने से भी बनता है। इसमें बाबा की एक बहुत अच्छी मुरली सी हॉल में चली थी कभी, हर सेकंड का त्याग पद्मों का भाग्य बनाता है। त्याग और भाग्य पे वो उंगली है, और त्याग है देहभान का त्याग, जो सभी त्यागों का मूल है। ये त्याग हो गया तो बाकी सभी त्याग स्वतः ही हो जाते हैं। तो हम अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाने के लिए आत्मिक स्वरूप का अच्छा अभ्यास करें, मिलन मनाएं बाबा से, इसको मुख्य बात कर ले अपने जीवन की, इसको वैल्यू दें। जिन बहनों को पीछे जगह नहीं, आगे आ जाओ, आगे बहुत जगह है। इस बात को वैल्यू दें, अपने से बातें करें। ये मिलन कल्प में एक बार ही होता है। अति अति भाग्यवान आत्माओं को ये भाग्य मिला है मिलन का। संसार में तो लोग सोए हैं, देखो अरबों की जनसंख्या से 10 लाख, कितने भाग्यवान हो गए 10 लाख। अब हम में से भी 10 लाख में से भी किसी किसी को भाग्य के सुंदर अनुभव होते, मिलन के सुंदर अनुभव होते हैं। तो ये मिलन रोज सवेरे अच्छी तरह कर लेना है, या मधुबन में श्याम को भी बहुत अच्छा रहता है, सबका वाइब्रेशन सी यहाँ जैसे श्याम के वाइब्रेशन संसार में और कहीं नहीं होते हैं। ज्ञान सरोवर थोड़ी फैली हुई जगह है, वहां का अलग, पर यहाँ सब यही यही होते हैं ना, बीच में बहुत अच्छा माहौल श्याम को हो जाता है। यहाँ से शांति के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलते हैं। तो श्याम को भी बाबा से बहुत अच्छा मिलन हो जाए, सवेरे भी हो जाए, दिन में जितना आप कर सके अच्छा है। और ये सबको याद रखना अच्छी तरह। बाबा का एक महावाक्य मैं सुनाता हूँ, बार बार सुनना है, बार बार अपने को याद दिलाना है। स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां समाप्त, सहज बदल जाएंगी। पर कोई कहे मेरा तो योग नहीं लगता, स्वमान होता नहीं, तो परिस्थिति बिगड़ती ही जाएंगी। माताएं विशेष ध्यान दें, बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं तो अपनी स्थिति को अच्छा बनाएं। सीधा सा स्वस्थिति श्रेष्ठ, आपका घर तीर्थ बन जाएगा। एक बड़े तीर्थ पर भी एक इष्ट देवी होती है, और एक छोटे घर में एक इष्ट देवी हो तो वो तीर्थ नहीं बनेगा। 5-7 लोग नहीं बदलेंगे, बदलेंगे। अपने श्रेष्ठ स्वरूप में रहना है। मैं महान हूं, आज का वरदान याद करो। खैर मेहमान तो समझना बड़ी चीज है, अभी तो घर वाले हैं सब अपने अपने, मेहमान समझना तो बहुत बड़ी साधना है। इस दुनिया में थोड़े दिन के मेहमान, सब कुछ छोड़कर, क्या माताएं बोलो, सब कुछ छोड़कर जाना है। अभी कोई जाना चाहे या न चाहे, जाना पड़ेगा या नहीं। अब सुख से जाएं, श्रेष्ठ भाग्य, परेशान होते जाए हाय ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो तो छोड़ेगा नहीं। बाबा ने कह दिया मैं महाकाल हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, तुम जाना न भी चाहो मैं तुम्हारे शरीरों को, बोलो क्या बोला था, भाइयों को याद है, माताओं को नहीं याद है, मैं तुम्हारे शरीरों को आग लगाकर तुम्हें वापस ले जाऊंगा। भगवान के सिवाय कोई नहीं बोल सकता, नहीं तो गुरु बोल दे तो सारे भाग जाएंगे, ऐसे गुरु के बाद नहीं जाएंगे हम। तो सहज मेहमान बन जाएं, बहुत बड़ी स्थिति है, लहराएगी ये हमारे सारे यज्ञ में, ब्राह्मण परिवार में लहराने वाली है। अब चलना है घर, लेकिन ऐसा तब ना हो कि सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया, असली कमाई तो की नहीं, चलने का समय भी आ गया, उन्हें बहुत पश्चाताप होगा। कि जो कुछ तैयार किया सारा जीवन लगा के अब उसे छोड़ के जाना है, ये लहर फैल जाएगी, जाना है, कोई परेशान होंगे कोई सुखी होंगे, इसलिए अपने बंधनों को काटते चलना है, चलने की तैयारी भी करनी होगी, सब कुछ छोड़कर चलना है, मेहमान है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन सूखा हो जाएगा, श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराएगी ये धारणा, जाना है माना भरपूर होना है, ये सोचना है हमें, जाना है तो भरपूर होना है, ठीक है ये विचार, जाना है तो व्यर्थ को भी विदाई दे दे अभी। इसलिए जिनको कुछ भी चिंताएं रहती हों, मैं एक अनुभव करने की बात आपको कह रहा हूं, बात आपने सुनी है, मैं उसको सुनाता रहता हूं क्योंकि उसके अनुभव मुझे भी बहुत अच्छे होते हैं। सब बातें मन के बोझ चिंताएं ये वो प्रभु अर्पण करो और देखो वो क्या करता है, लेकिन उसमें बहुत विश्वास चाहिए, विश्वास रहता नहीं, ये देखने में आता है अनेक ब्राह्मणों का, ये विश्वास रहता नहीं कि बाबा क्या करेगा, करेगा या नहीं करेगा, सोचते रहते हैं 5 दिन तो हो गए अब तक तो कुछ किया नहीं, पता नहीं कब करेगा, छोड़ो हम ही करते हैं, खुद भी उलझते रहते हैं, बाबा का विश्वास भी डामाडोल रहता है। तो सभी श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए मैं महान आत्मा हूं, आज की मुरली से ही ऐसे तो पता ही है इसका, लेकिन चिंतन में लाओ इसको, अपनी फीलिंग में लाओ, मैं महान हूं। अपने घर में सबको देखो, भले आपके बच्चे हैं, मैं इन सबसे महान हूं, इनका कल्याण करने के लिए आई हूं, देखो कितनी अच्छी स्थिति होगी। ये नहीं होगा ये ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे, मेरी सुनते क्यों नहीं, मैं विश्व कल्याणकारी महान, इन सब का कल्याण मुझे करना, अगर ये अच्छे होते तो मैं कल्याण करने के लिए क्यों आती। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के लिए चिंतन आवश्यक है, चिंतन करें, स्वीकार करें, मैं महान हूं। हैं महान सभी, हैं कौन कौन बैठे महान यहाँ, अच्छे यहाँ तो सारे ही महान, बाहर की सभाओं में हाथ उठवाएं तो मुश्किल मिलते हैं, हम भट्टी के लिए भी जाते हैं ना, ये टॉपिक मैं लेता ही हूँ, स्वमान में हाथ उठवाता हूँ तो पहले 10% लोग हाथ उठाते, 1000 बैठे हैं तो 100 उठाएंगे, फिर मैं उन्हें जरा याद दिलाता हूँ, तुम महान हो, किसने कहा तुम महान हो, मैंने थोड़ा ही कहा, भगवान ने कहा जो तुम्हें जानता है, थोड़ी बात सुना के फिर हाथ उठवाते हैं तो कहीं कहीं सब उठा देते हैं, कहीं कहीं फिर भी थोड़े सोचते हैं, हम तो महान नहीं हैं। हम महान हो या ना हो, अपनी महानताओं की स्मृति हमें महान बना देगी। अगर आप ये सोचेंगे मेरे में तो ये कमजोरी है, मेरे में तो ये कमजोरी है, हम तो महान नहीं हैं, तो कमजोरियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन हम महान हैं ये अभ्यास करेंगे तो महानताएं आती जाएंगी। तो ये सहज अभ्यास है जो हमारे जीवन को बदलते हैं। इसके बाद योग भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही चिंतन महान बनता है व्यर्थ खत्म होता है। एक ही विधि आप अपना लें, स्वमान से हम अपने चिंतन को महान बनाएं तो व्यर्थ खत्म होता जाएगा, योग अच्छा लगता जाएगा, मिलन से मिलेगा सब कुछ, जो बाद में आए वो सुन लें बाबा का महावाक्य, मिलन से मिलना है सब कुछ मिलना है बाबा से, श्रेष्ठ भाग्य मिलना है। हम जरा अपने आधे कल्प के भाग्य पर अगर ध्यान दें, पहला आधा कल्प कैसा है हमारा भाग्य, और देखो बाबा कैसा है, जिसने उसको एक बार कह दिया तुम मेरे हो, उसे स्वर्ग का अधिकार दे देता है, थोड़ी पवित्रता अपना ली और ज्यादा दे देता है, थोड़ा योग कर लिया सेवा कर दी और ज्यादा दे देता है, और योगी बन गए तो सब कुछ समर्पित हो गए। माताएं भी समर्पित हो सकती हैं, सारी जितनी यहां बैठी होंगी, सोच लो अच्छी तरह, जाने नहीं देंगे आपको घर वापस, होंगी समर्पित। ये समर्पणता बड़ी सूक्ष्म चीज है, सब कुछ तेरा। गीत भी बहुत अच्छा था, जो कुछ मिला है सब तुमसे ही तो मिला है, सत्य यही है, सब कुछ तेरा मन से कर दे। आज कितनी अच्छी बात थी, मैं कितना अच्छा क्या कहा था, ग्राहक हूं सौदागर, क्या ले लेता है भोला ग्राहक, पुराने कपड़े दे दो हीरो के कपड़े ले लो, मिलेगा कहीं ऐसा। देखो बाबा का प्यार, मैं ये बातें सुन के सोचता रहता हूँ, क्या है बाबा, कितना प्यार करता है, ऐसा भाग्य देकर जाता है कि मेरे बच्चों को दो युग तक, बोलो आगे, कोई परेशानी ना हो, ये तो छोटी सी बात कर दी आपने, थोड़ी बड़ी बात बताओ, दो युग तक मेरे सभी बच्चों को कमाना ही न पड़े। कई माँ बाप भी सोचते हैं ना, बच्चों को इतना दे जाएं कि उन्हें कुछ करना ना पड़े, निठल्ले बैठे रहे, लेकिन बाबा ये नहीं सोचता, इतना प्यार है कि दो युग तक हमें नौकरी नहीं करनी है, बिजनेस नहीं करने होंगे, पैसे की चिंता नहीं रहेगी, बच्चों की चिंता नहीं होगी, संबंधों में क्या क्या होगा सोच लो, जो आज गंदगी है इसका तो नाम निशान नहीं है वहां। आज जहां संसार में हम रहते हैं कलयुग में, इसमें रहने वाले सतयुगी संसार का तो चित्र भी नहीं बना सकते, कैसा होगा वो संसार, यहां तो रोज केस हो रहे हैं, डॉक्टरों के बाया पैर खराब था, ऑपरेशन कर दिया दाएं पैर का, और दो बड़े सर्जन ने, परसों तरसों की तो बात, बड़े सर्जन, कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं कर रहे थे, बहुत पढ़े लिखे सर्जन, आखिर हंगामा हो गया, चार पांच थे उनके साथ ही, तीन सबको निकालना पड़ा, तब जान बची। देखो क्या हो गया मनुष्य की बुद्धि को, अब आप सोचो, उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया होगा ना, लेकिन कुछ टेंशन में होंगे, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, तो देखी नहीं रिपोर्ट अच्छी की, लेफ्ट पैर की है राइट की, कर दिया काम। बुद्धिमान लोगों की बुद्धि पर देखो, ये सोचो, कहीं छोटा मोटा गांव में जाने वाला डॉक्टर दवाई दे दे नुकसान हो जाए तो बात अलग, बड़े बड़े लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो हम सभी की श्रेष्ठ स्थिति इस संसार से, इस पाप को और पापियों को समाप्त करेगी। प्रभु मिलन करें। अब यहां जब आप हैं, सभी भाई बहने अच्छा चिंतन करेंगे, चिंतन से जीवन बनता है, योग बाद में रखो, पहले सुंदर चिंतन, कैसा सुंदर जीवन मिला, कैसा सुंदर जीवन दिया, कैसा सुंदर ज्ञान दिया। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है ना, ज्ञान छोटी चीज नहीं होता, इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे युगों से, ढूंढ रहे थे जहां तहां, आज भी लाखों विद्वान लगे हुए हैं सत्य की खोज में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं, सत्य का पता नहीं चलता। बाबा ने आकर सरल शब्दों में ज्ञान दे दिया, खुशी लेकर आए हैं हमारे लिए, सामने बैठता है भगवान, मुरलियों में याद दिलाता है ना, मैं वही हूँ बच्चे जिसे तुम याद करते थे, कोई ये न सोच ले कौन आ गया, मैं तुम्हारा परम पिता बैठा हूँ निराकार, याद दिलाता है हमें, न साथ चढ़ जाए अपने श्रेष्ठ भाग्य का। तो योग से, ऐसा दीदीपन से, श्रेष्ठ चिंतन से अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाएंगे। शुरू में मैंने एक बात कही, सभी सुन ले पीछे आने वाले, बाबा का ये महावाक्य, संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। अर्थात जितनी शक्ति किसी के संकल्पों में, उतना ही महान उसका भाग्य। और जो चिंताओं में है, जो व्यर्थ में है, जो परचिंतन में है, जो तेरे मेरे में है, उनका भाग्य त्रेता का, पूरा तो नहीं पर त्रेता का, वो भी अच्छा है। पर जिनको सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाना है, वो संकल्पों को श्रेष्ठ बनाए, अपने संस्कारों को बहुत सुंदर बनाए। हमारे श्रेष्ठ संस्कार बाबा की झलक दिखाते हैं। तो किसी को भी हमारे बारे में, यज्ञ के बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अब हम दूसरी चीज लेते हैं। आज हमारे ओम प्रकाश भाई ने देह त्याग किया है, बहुत तो आप में से उनको नहीं जानते, कहानी सुना देता हूं उनको। रजौरी गार्डन दिल्ली, हम भी वहां आए थे, तब वो सेंटर में समर्पित थे, हमसे 5 साल पहले से। हम उनके भाग्य को देख के बड़े खुश होते थे, प्रेरणा लेते थे, हम भी ऐसे ही रहे। सेंटर में रहते, उनकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में नौकरी भी थी, और यहां पर मधुबन में हमारी एक भूरी दादी होती थी, पुराने लोग ही जानते होंगे उन्हें। कई साल हो गए देह छोड़े भी, कितने हो गए छोटलाल? 8-10 साल हो गए। बाबा के समय से, जब से यज्ञ शुरू हुआ था, आबू में आए थे, तब से उसकी ड्यूटी थी सब्जी लाना नीचे से, पार्टियों को रिसीव करना, उनके टिकट बनवाना, उन्हें छोड़ के आना। एक भूरी दादी। तब हमारे पास न ट्रक थे न कारें थी, उसे यहां से बस स्टैंड तक पैदल जाना है, वहां से बस में बैठ के नीचे जाना है, वहां से सब्जी, एक ट्रक था बाजार वालों का, उसमें सब्जी रखवानी है, ट्रक आ जाएगा, उसको बस लेके फिर वापस आना है, बस स्टैंड से पैदल आना है। आते ही बाबा कहेगा, बच्ची पार्टी आ रही है, स्टैंड से नाश्ता करते फिर चल दी। 3 दिन चक्कर लगा देती थी। हम उसे बहादुर कहते थे, बहुत, जो कभी ना नहीं कहती थी। ये दो आत्माएं यज्ञ में ऐसी थी, भूरी दादी और भोली दादी, जो ना नहीं कहती थी। फिर आई, खाना खाया, थोड़े रेस्ट किया, फिर बाबा का संदेश आया, बच्ची एक पार्टी और आ रही है से हमको, फिर चल दी, बैग उठाया चल दिए। देखो डेडिकेशन माताओं का, वो भी माता थी, सफेद बाल थे उसके, सारा आबू रोड जानता था, भूरी दादी। लोग सोचते थे ब्रह्मा कुमारियों की हेड यही है, यही दिखती है चारों। एक सिंधी परिवार जहां से सब्जी लेते थे, वो अभी भी हैं, उनके घर में उन्होंने उसको एक रूम दिया हुआ था, जब रात को रहना, देर हो गई, 3 ही बसें आती थी शायद दिन में आबू नीचे से, 3 केवल, वो छूट गई तो छूट गई, तो वो वहीं रह जाती थी फिर। तो जब यज्ञ का कार्य बढ़ गया, तो फिर यहाँ निर्वैर भाई थे और सब, उन्होंने विचार किया, दादी प्रकाशमणि ओम प्रकाश भाई को यहाँ बुला लिया जाए, तो उनको यहाँ बुला लिया गया, क्योंकि वो दिल्ली में यही काम सबका देखते थे, सेवा, लोगों को लाना ले जाना, टिकट कराना, उनको यहाँ बुला लिया गया। तो फिर उन्होंने ये सारा कार्य संभाला, रिसीव करना। तब तक हमारे पास छोटी मोटी बस आ गई थी, कारें तो नहीं आई थी। कारें तो तब आई जब ज्ञान सरोवर बना, उसके 2-4 साल बाद। उसे पहले तो बाबा के समय 2 साइकिल थी यज्ञ में, पहाड़ियों में साइकिल कितनी चलती है आप समझ सकते हैं, कोई बाइक वाइक कुछ नहीं, सबको पैदल जाना है, सब कुछ हाथों से काम करना है। तो फिर वो यहाँ रहे, उन्होंने बहुत सेवाएं की, तबीयत नीचे जब शुरू हुआ तो फिर नीचे चले गए, तो रेलवे स्टेशन पे भी ऑफिस बन गया अपना, स्टाफ बन गए, कार्य तो अच्छा चलने लगा, सब जगह अलग अलग ड्यूटी वाले हो गए, ज्ञान सरोवर में अलग, यहाँ अलग, लेकिन वो अपनी सेवाएं करते रहे। पिछले कई सालों से तबीयत उनकी काफी ढीली थी, बहुत ढीली थी, और कई बार बिल्कुल आईसीयू में रहे, हर साल हो जाता था। अब भी यहाँ ले आए थे आज शाम को 3:30 ना, 3:30 बजे उन्होंने शरीर छोड़ा। मुझे बता रहे थे वो जो ज्ञानसर रोड में उनके भाई हैं, तो वो आए थे क्या, कल तो इतने ठीक हो गए थे कि लगता था फ्रेश, सब कुछ बीमारियां खत्म हो गई हैं। आज सवेरे भी अच्छे रहे, फिर गड़बड़ हुई, हार्ट अटैक हो गया। ऐसे में हार्ट अटैक होना, तब समझ गए डॉक्टर कि अभी जाने का समय है। तो ये उनकी एक अच्छी जीवन कहानी थी, बहुत लंबे समय से ज्ञान में चले भी, मैं समझता हूँ 60 साल हो गए उन्हें, हो गए होंगे, और समर्पित जीवन भी 52-53 ईयर्स का हो गया। तो ऐसी आत्माओं के लिए हम सभी अब योग करेंगे और आधा घंटा चलेगा, करेंगे सभी, बैठेंगे, कमाई तो अपनी भी है और वाइब्रेशंस उस आत्मा को भी जाते हैं। विशेष रूप से रहस्य ये है कि वाइब्रेशंस उस आत्मा को नहीं, कहाँ ये आपको पता नहीं है, उसके उस गर्भ को जाते हैं जहाँ उस आत्मा को प्रवेश करना है। तो ये पतित माँ के तन में पवित्र गर्भ निर्माण हो जाता है, ये बहुत बड़ा रहस्य है, इसको आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और ये आत्माएं जाकर देवताओं के माँ बाप बनेंगे, देवताओं को जन्म देंगे। तो देवताओं का जन्म तभी संभव है जब देह भी पावन हो और आत्मा भी पावन। तो पतित माँ के द्वारा पावन देह का निर्माण होगा, और इसमें हमारा जो ये योग है, योग के वाइब्रेशंस हैं, ये उस गर्भ को जाते हैं। बाबा इसकी डायरेक्शन उस गर्भ की ओर करता है, और गर्भ में जो पिंड है छोटा, वो पावन हो जाता है। तो ये आत्मा, पावन आत्मा, पावन शरीर में प्रवेश करेगी। बहुत बड़ा रहस्य है जो युग परिवर्तन के लिए, कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए, कलयुग में ही सतयुग की शुरुआत इस तरह से होती है। तो बहुत अच्छे ढंग से उनके लिए, तो इसलिए योग नहीं करना कि हम करें उनकी गति अच्छी हो जाए, उनको शांति मिले, ये सब तो है नहीं ना। उनकी गति तो सीधी अच्छी हो गई, सीधी बाबा के पास गए, शांति की तो बात ही नहीं, शांति में ही थे बहुत समय से। लेकिन उनका नया शरीर देवताई शरीर हो और वो महान कार्य करें बाबा के, इन आत्माओं के द्वारा एक और सेवा होती है कि ये कई परिवारों में जाकर परिवारों को ज्ञान में लाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हो रहे हैं, तो चलेंगे अब सब 10 बजे तक योग चलेगा। भाई यहाँ बैठाने अभी बैठा दो, भले मैं गीत के बाद जाऊंगा, 9:30 के गीत के बाद लाल लाइट करें, एक गीत पहले बजा दें, वही जो शुरू किया था ना, फिर बजा दो, बहुत अच्छा गीत, योग में मस्ती का गीत। बहने और आगे हो जाएं, खुला बैठ जाएं, किसी को नीचे की दिक्कत हो वहां जा सकते हैं। चलें, बिल्कुल ऐसा अभ्यास करेंगे, बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं, और जहां भी बाबा उस आत्मा के निमित्त इन वाइब्रेशंस को भेजना चाहे वो भेजें।
यही।